तो करता है, बता नहीं सकता। कुछ इसी किस्म की कैफियत है। हम अल्लाह ताला से दुआ मांग के इस आयत की तफसीर किस एंगल से करेंगे, यानी खास तौर पे सबक तो पूरा है, लेकिन जो शुरू की आयत आयत नंबर 35 जिसको हम आयत नूर कहते हैं, तो इसकी तफसीर के वक्त बहुत ही ज्यादा दिल डरता है, क्योंकि इसमें अल्लाह सुबहाना तला की बात है। आज के सबक का अगर बुनियादी तौर पर खुलासा देखना है तो आपको थोड़ा सा अपने आपको बहुत अटेंटिव करना पड़ेगा, क्योंकि आज का सबक आम सबक नहीं है। हम शुरू से ये चीज देखते आए हैं सूरत बकरा में कि इंसानों के तीन गिरोह होते हैं, मोमिनीन, काफिरीन और मुनाफिकीन। और ये तरतीब तीन दफा वाली बहुत जगह हमने कुरान पाक में अभी तक देखी है। आज के इस सबक में हम इन्हीं तीन किस्म के लोगों की बात पढ़ने वाले हैं, और इसकी रोशनी में हम देखेंगे कि मोमिनीन के अंदर क्या सिफात है, कि नूरे ईमान और नूरे हिदायत और नूरे फितरत मिलकर उनको अल्लाह की तरफ भागने वाला बनाता है। और इसके बाद हम काफिरों के दिलों की कहानियां पढ़ेंगे, दो तमसीलें उसमें, आज के सबक में तीन तमसीलें, पैराबल्स। और आप समझते हैं कि जो तमसील होती है उसको समझना और मुश्किल होता है। एक तमसील ईमान वाले के दिल की कैफियत की है, और दो तमसीलें कुफर की हैं, और फिर सबक के आखिर में हम मुनाफिकीन का जिक्र पढ़ेंगे। अगर ये सारी तरतीब और लेसन प्लान की हिकमत सामने ना रखी जाए तो सिर्फ सूरते आयते नूर पढ़ी जाए, जो अमूमन पढ़ते हैं लोग, दर्स भी इस पे देते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तफसील से बात होती है, लेकिन जब तक ये तीनों मजमून इकट्ठे ना पढ़े जाए बात समझ नहीं आती। जिसको आप कह लें कि किसी भी लोगों का, जो बच्चे खेलते हैं, अगर एक टुकड़ा बहुत बड़ा कर दिया जाए तो दूसरे टुकड़े बहुत छोटे कर दिए जाएं तो भी तस्वीर की खूबसूरती नहीं होती। तो कुरान पाक की ये खूबी है, और एक पढ़ाने वाले को इसका यकीन होना चाहिए कि सिर्फ एक बात को हाईलाइट नहीं करना, उस बात के आगे और पीछे को करना है। आपको इस सबक को सुनने का क्या अंदाज होना चाहिए, वही जो ग्रामर पढ़ते हुए होता है। मैंने ग्रामर की क्लास में एक दफा जिक्र किया था कि जितनी बात बताई जाए अगर वो समझ आ गई है ना, उसको वहीं छोड़ दे, फिर उसे अगली बात समझाई जाए तो उसको समझ ले। इंशाल्लाह जब सबक का आखिर होगा हम इस तफसीर आयत को पूरी एक दफा नहीं करेंगे, बार बार करेंगे, एक एंगल से फिर दूसरे से, तो आप देखेंगे कि एंड पे इंशाल्लाह शरह सदर हो जाएगा। अगर पहली दफा पे सोचें क्या है, समझ नहीं आ रहा, मुश्किल है, वो है, तो फिर अगली बात समझ नहीं आती। बहुत आसान बात है असल में, वही बात है जो अभी तक 18 पारों में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन इस वक्त वो सारी बातें जमा हो रही हैं। तो फिर आज के सबक में इंशाल्लाह ताला जिन सवालों का जवाब हमें मिलने वाला है उसमें तो ये है कि अल्लाह नूरु समावाती वल अर्द, इसकी क्या हकीकत है। फिर दूसरी चीज हम देखेंगे कि अल्लाह के नूर से हिस्सा पाने वाले तीन गिरोह कौन से हैं। ये उससे मुख्तलिफ है जो इब्तदाई तौर पे तीन गिरोह का है, यानी एक हिस्सा जो अल्लाह के नूर को पा लेता है, फिर आगे उसके क्या मरतबे हैं, मुख्तलिफ किस्म के लोगों के हम मरतबे देखेंगे, और इसी की रोशनी में फिर हम अपना जायजा भी लेंगे कि मैंने अभी तक अल्लाह के नूर में से कितना हिस्सा पाया। फिर इसके बाद दूसरी चीज जो आज के सबक में हमारे सामने आएगी वो ईमान वाले की है अहमियत, कि जिसके दिल को अल्लाह ताला ने अपने नूर के समाने की जगह बना दिया। अगली चीज आज के सबक में हम देखेंगे कि वो कौन सी हस्तियां हैं कि जिनके कारोबार और उनकी तिजारतें उनको अल्लाह की याद से गाफिल नहीं करती, और दुआ भी करेंगे कि अल्लाह ताला हमें और हमारे मर्दों को उन्हीं लोगों में शामिल कर ले, हमारे घरों हमें अल्लाह की याद से गाफिल ना करें, और हमारे मर्दों के कारोबार और काम कमाना हमें अल्लाह की याद से, उनको अल्लाह की याद से गाफिल ना करें, उनका कमाना और हमारा लुटाना यानी शॉपिंग हमें अल्लाह की याद से गाफिल ना करें, उनका खाना और हमारा पकाना हमें अल्लाह की याद से गाफिल ना करें। फिर इसके बाद हम मस्जिदों और दीन के इदारों की अहमियत और उनके अंदर कौन सी चीजें, आज के सबक में हम 15 आदाब भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, जो दीन की जगह खास तौर पे मस्जिद के लिए मुकर्रर किए गए। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कुफर को अंधेरों से क्यों मिसाल दी गई और काफिर के दिल का क्या हाल है, गोया कि आप कह सकते हैं कि नूरुन अला नूर के मुकाबिल हम फमा बादल, परिंदे और इसी तरह की कायनात में फैली हुई मुख्तलिफ चीजें, ये इन तीनों में से किस कैटेगरी में आती हैं, और इंसानों की मुख्तलिफ कैफियात को देखते हुए फिर हम आखिर में निफाक वाली कुछ अलामतें देखेंगे। तो आप खुद देख सकते हैं कि तमहीद इतनी लंबी है तो इसके अंदर क्या नहीं होगा। हम अल्लाह ताला से दुआ मांगकर शुरू करते हैं कि अल्लाहुम्मा जल फी कल्बी नूरम वफी बसरी नूरम वफी समी नूरम। अब चलते हैं आयत नंबर 35 पे, थोड़ा सा इसका भी समझ लीजिए मिजाज। तो फिर अभी हमने क्या समझा, सबक का मिजाज समझा, अब हम थोड़ा सा मिजाज समझेंगे आयत 35 का, और इसके बाद फिर हम चलेंगे। आप देखिए कि यहां से पांचवा रुकू शुरू हो रहा है। पहली आयत है सूरत नूर की, पांचवे रुकू की अजीम तरीन आयत है। पढ़ते हुए पता नहीं क्यों बार बार आयतुल कुर्सी पे नजर जाती है मेरी। शुरू में हमने बात की थी कि सूरत नूर और सूरत अल अहजाब का मजमून मिलता है, याद है आपको? वो सन 5 हिजरी में नाजिल हुई थी तो ये 6 में हुई थी, और दोनों में बहुत सारे मुआशरती अहकाम दिए गए, और खास तौर पे लिबास हिजाब और पर्दे की जो हदूद है उसकी बात थी। इस जगह एक छोटी सी मुमासले दोनों की और नोट कर लीजिए कि यहाँ हम सूरत नूर की आयत 35 में ईमान और ईमान के मुख्तलिफ मराहिल देखने लगे, तो सूरत अल अहज़ाब की भी आयत 35 में ईमान और इस्लाम की कैफियत को बयान किया गया। फिर इसके बाद आप देखिए कि जो इंसानों के 3 गिरोहों की बात सूरत बकरा के आगाज में हमने पढ़ी थी, इसी तरह याद रखिए जब भी किसी मुआशरे में, जैसे कि इस वक्त आज आपके इस मुआशरे में, हर दौर की ये बात है, आपके लिए भी ऐसे ही है, जब भी दीन की सच्ची दावत पेश की जाती है तो लोग भी वो जो नताइज की परवाह किए बगैर दिल और जान से हक की दावत पे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हैं, और फिर अपने ईमान और अमल से दावे को सच्चा कर दिखाते हैं। यानी ये वो लोग हैं जिनको लोग फिर दीवाना और मजनू और कुछ कहते हैं, अल्लाह इनके लिए साबिकून अलवलून का टाइटल देता है। इसके मुकाबले में एक दूसरा गिरोह उठ जाता है जो बिल्कुल इनकी ऑपोजिट, हद दूसरी इंतहा पे पहुंच जाते हैं, तासुब हसद बुगस जिद और इनकार और मुखालफत, कमर कस लेते हैं और आखिर दम तक इस पर डटे रहते हैं। एक तीसरा गिरोह होता है जो इस दावत के मुकाबले में बीच के रास्ते पे रहता है, ना तो पूरे यकीन और खलूस के साथ इस दावत को कबूल करते हैं, क्योंकि इस दावत को कबूल करने से दुनिया के मफादात जाते हैं और कई नुकसानात सामने आते हैं। इनका हल क्या होता है? जब हालात साजगार हो तो हक वालों का साथ देते हैं, हक वाले को दीनदार कह रहे हैं, सीधी सी बात है, दीन का साथ देते हैं, चले। लेकिन जो ही को आजमाइश आती है, कुर्बानी का तकाजा आता है, कोई अपनी जाती जिंदगी का तकाजा सामने आता है, तो फौरन अपनी राह अलग कर लेते हैं, फिर कहते हैं सॉरी वी कैंट गो फर्दर। ऐसे लोगों की दिली कैफियत और इनका किरदार हम सूरह हज की आयत 11 में पढ़ चुके हैं, वमिनन नासि मन याबुदुल्लाह अला हर्फिन, के लोगों में कोई ऐसा भी है कि जो किनारों पर रहकर अल्लाह की इबादत करता है, तो अगर इसे कोई फायदा पहुंचे इसके साथ मुतमईन रहे, लेकिन अगर कोई आजमाइश आ जाए तो मुंह के बल उल्टा फिर जाता है, तो ये है खसारा दुनिया और आखरत का, और यही है ज़ालिका हुवल खुसरानुल मुबीन, बहुत बड़ी तबाही। बस इन आयात में हम अब यही 3 गिरोह पढ़ने लगे हैं। किसी भी मुआशरे में ये तीनों गिरोह मौजूद होते हैं। पहली किस्म के लोग सलीमुल फितरत होते हैं, इनकी फितरत सलामत होती है, जिस नूर पे अल्लाह ताला ने इनको पैदा किया होता है, नूर फितरत, वो अभी तक जिंदा होता है, माहौल ने और गुनाहों ने उसको आलूदा नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह, जो ही इन तक पैगामे वही पहुंचता है, बगैर सोचे समझे इसके फैज को और बरकत को कबूल करते हैं और चल पड़ते हैं। नतीजा क्या होता है कि इनका बातें ईमान हकीकी के नूर से जगमगा उठता है। ऐसी लोगों की कैफियत आयत 35 में नूरुन अला नूर से बताई गई। दूसरी इंतहा पर जो लोग हैं उनका दिल नूरे ईमान से खाली रहता है, उसको आयत 36 से अगली आयतों में हम देखेंगे कि किस तरह से, आयत नंबर 37 से उनका बात शुरू होती है, वल्लज़ीन कफरू आमालहुम कसरा, उसके अंदर हम इनकी बात देखेंगे, बल्कि जी आयत नंबर 39 वो काट दें। आयत नंबर 39 में उनका जिक्र है कि वल्लजीना कफर व अमाल हुम का सराब। ठीक है, तो ऐसे लोगों की कैफियत अल्लाह सुबहान तआला ने पेश कर दी कि ये वो लोग हैं कि जो छोटी मोटी नेकियां भी नहीं करते, सारी जिंदगी नफसानी ख्वाहिशात में रहती है इनकी, और जुलुमात उम बादुहा फोकबात इनके दिल की कैफियत है। इसके बाद तीसरा गिरोह जो है जिनके दिल ना तो पूरी तरह हक के साथ होते हैं और ना हक से फर्क होते हैं, ऐसे लोग जाहिर नेकियों के काम भी करते हैं लेकिन उनके अमाल शराब की तरह है। आइए आयत को शुरू करते हैं और इसके साथ साथ रहेंगे। मैं कोशिश करूंगी कि बहुत ही आसान तरीकों से मुश्किल अल्फाज को स्किप करते हुए आपको इस पूरी आयत के कि जमाइर लिखा दूं। जमाइर क्या होती है कि किस चीज की तरफ निस्बत है, कि यहाँ नूर से क्या मुराद है, ही से क्या मुराद है, मिश्कात से क्या मुराद है। तो इंशाल्लाह फिर इसको आप लोग अल्लाह की तौफीक से फिर भी समझेंगे। मेरे बस में तो नहीं है कि आपको समझा सकूं, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम सबके दिलों में ये चीज डालता है और जब हम कोशिश करते हैं तो अल्लाह ताला फिर मदद भी करते हैं। फरमाया अल्लाह नूर समावाती वल अर्द, अल्लाह नूर है आसमानों और जमीन का। लफ्ज नूर आया और हमें अल्लाह ताला का नाम अन्नूर भी मिलता है। अल्लाह सुबहान तआला के जो 99 नेम्स है मारूफ, उनमें एक नाम अन्नूर है। नोट कीजिएगा लफ्ज नूर और अन्नूर में जमीन आसमान का फर्क है। नूर क्या होता है? नूर कहते हैं रोशनी को। दो दो तरह का होता है नूर, एक है मखलूक यानी जिसको अल्लाह ने पैदा किया और एक है नूरे गैर मखलूक। मखलूक क्या, जैसे आपकी मेरी ये ट्यूबलाइट, बल्ब, सूरज की रोशनी। अल्लाह ने सूरज की रोशनी बनाई ना, तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि अल्लाह नूर है यानी अल्लाह सूरज है। समझ रहे हैं? यानी जब हम नूर को एक मादी चीज से तशबीह दें, चाहे वो सूरज की रोशनी है या चांद की है या सितारे की है या आज हमारे बल्ब और फानूस की, तो हम ये नहीं कह सकते कि अल्लाह नूर उस समावाद से मुराद ये वो नूर है। इतनी बात क्लियर हुई? यानी नूर दो किस्म का होता है, एक है नूरे मखलूक, और मखलूक क्या, खलक से यखलुकु मफूल यानी जिसको अल्लाह ने पैदा किया। तो जिसको अल्लाह ने पैदा किया वो अल्लाह खुद कैसे हो सकता है? देखिए मैं इस पर इतना जोर क्यों दे रही हूं कि इसकी गलत तफसीर से लोगों ने अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर अंदर बाहिर हलूल सब अक्स कर दिया। कभी आप कुछ ऐसे मिजाज के लोग जो तसव्वुफ की भी एक दूसरी हद पे चले गए, हालांकि तसव्वुफ अपनी जगह बड़ा खूबसूरत लफ्ज है, उन्होंने अल्लाह नूरु समावाती वल अर्द से कह दिया कि अल्लाह हर जगह। ये जो जुमला हम बोलते हैं ना अल्लाह हर जगह, इसको अब अपनी जिंदगी से काटते हैं। फिर वो कहते हैं तेरे अंदर नूर मेरे अंदर नूर, और कवालियों और शेरों में ऐसी बातें बड़ी आम है, अंदर तू बाहर तू अर्श तू कुर्सी तू मेज तू, ये गलत अकीदा है क्योंकि अल्लाह मखलूक नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये तो बात काट दी। दूसरा जो नूर होता है ना वो है गैर मखलूक, जिसको किसी ने क्रिएट नहीं किया। यहां इससे मुराद गैर मखलूक है। अल्लाह वो नूर है जिसको किसी ने पैदा नहीं किया, वो खुद नूर है, उसकी जात नूर है। अच्छा, अब नूरे मखलूक की बात कर रहे हैं ना, तो इसकी फिर दो किस्में हैं। आप ऐसी चीजों कैसे लिखा करें एरोज के साथ, नूर दो एरो लगाए, नूरे मखलूक दूसरा एरो लगाए गैर मखलूक। जो मखलूक है उसकी फिर आगे दो किस्में, उसके नीचे फिर दो एरो लगा दें। नंबर एक हिस्सी नूर, जिसको महसूस किया जा सके। मसलन सूरज की रोशनी को महसूस कर सकते हैं ना, आज क्लाउडी है बाहर तो सूरज की रोशनी कम है ना, जिस दिन सनी होता है तो सूरज बहुत ज्यादा होता है, हम फील करते हैं ना, हमारी दुनिया बदल जाती है। बाहर से अब आए तो आपको आज वो दिन नहीं लगा होगा जो आमतौर पर दिखता है। ठीक है, वो नूर जिसको महसूस किया जा सके वो नूरे हिस्सी है, सूरज का, चांद का, सितारों का, पहाड़ों, जो भी रोशनी दुनिया में दिखती है। दूसरा नूर जो होता है ना नूरे मखलूक, वो होता है मानवी नूर, जिसको महसूस नहीं कर सकते। मसलन नूरे हिदायत, मसलन हम महसूस कर सकते हैं आज रोशनी कितनी है, सूरज की, चांद की कितनी है, लेकिन हिदायत को हम फील नहीं कर सकते। तो नूरे हिदायत बंदे मोमिन के दिल में होता है। अल्लाह सुबहान तआला का एक नाम अल हादी भी है, वो लोगों को हिदायत देता है, रास्ता दिखाता है। उसने दुनिया में इंसानों को जिंदा रहने के लिए हर तरह की गाइडेंस दी है। तो जब हम कहते हैं कि अल्लाह नूरु समावाती वल अर्द, तो अब इसके आगे इसकी मुख्तलिफ तफसीरें लिखे। नंबर एक नूर बमानी मुनव्विर, मुनव्विर नूर देने वाला, उर्दू में भी ये लफ्ज आता है ना, चीजों को नूर देने वाला, तो फिर मानी क्या कि अल्लाह चीजों को नूर देने वाला है। अब जब ये तारीफ की तो इसके नीचे क्या समझेंगे, अल्लाह कौन सा नूर देता है, सूरज को रोशनी अल्लाह ने दी, चांद को रोशनी अल्लाह सुबहान तला ने दी, सितारा चमकता है, आज आपका बल्ब चमकता है, ट्यूब चलती है, आज की लेजर में से रोशनी है, यानी हर किस्म की हिस्सी रोशनी का माखिज अल्लाह। आसान बात है ना। दूसरा इसका मानी अल्लाह नूरु समावाती का क्या है, मानवी नूर भी अल्लाह ही देता है, कौन सा नूरे हिदायत। आज दुनिया में जिसके पास भी हिदायत है वो अल्लाह की अता करता है, वो अल्लाह सुबहान तआला का तोहफा है। कोई बंदा अल्लाह की मर्जी के बगैर हिदायत पे आ ही नहीं सकता। आज अगर कोई बेहिदायता है ना, हिदायत से दूर है, तो असल में वो मुनकर है, उसने अल्लाह की दी हुई हिदायत से फायदा उठाने से इनकार कर दिया। अल्लाह सबके लिए मुनव्वर था। अब आपके दिल में सवाल है कि अच्छा फिर काफिर का क्या कसूर है, काफिर का कसूर यह कि उसने आंखें बंद कर ली, कौन सी, दिल की आंखें बंद कर ली। जैसे सूरज निकला हुआ है, आप आंखें बंद कर लें, फिर क्या मुझे कुछ नहीं दिखता, तो बात वाजे हुई। मैं इस सारी बात को दोहराती हूं, आसानी से समझ जाएंगे। अल्लाह अपनी जात से नूर है, ठीक है, अल्लाह नूरु समावाती वाल अर्द, इससे क्या मुराद है, अल्लाह जमीनों आसमान को नूर देने वाला है, कौन सा नूर, नंबर एक हिस्सी नूर जिसको महसूस किया जा सके, दुनिया में करते हैं सारी चीजों को महसूस, ये भी अल्लाह ही देता है। और दूसरा इससे मुराद क्या है कि अल्लाह हिदायत देने वाला है, मानवी नूर भी अल्लाह ही देता है, नूरानी करने वाला भी है और नूरे हिदायत देने वाला भी है। इसी तरह नूर वो चीज होती है जो खुद भी मुनव्वर हो और दूसरों को भी मुनव्वर करे। जैसे अब बल्ब खुद भी तो रोशन है ना, लेकिन इसकी रोशनी में हम चीजें भी देखते हैं। ये तो नहीं हो सकता कि बल्ब बंद हो उसमें रोशनी ना हो और हम उसकी रोशनी में देखें, बंद बल्ब और जलते हुए बल्ब का यही फर्क है। तो आप कह सकते हैं कि अल्लाह की जात को सिर्फ समझने के लिए कि अल्लाह की जात की कोई मिसाल नहीं, लेकिन जैसे जलता हुआ बल्ब है अल्लाह नूरु समावाती, वैसे खुद भी रोशन और रोशनी देने वाला भी, खुद भी अलहादी और दूसरों को हिदायत देने वाला भी है। अच्छा, अब इतनी बात से बात समझ आ गई कि अगर अल्लाह ना होता तो ना सूरज होता, ना चांद होता, ना सितारे होते, ये दुनिया तारीखियों में डूबी होती, और सबसे बढ़ के ये है कि दुनिया में हिदायत नाम की कोई चीज ही ना होती। अल्लाह सुबहान तआला की जात ने ये सब कुछ अपने हाथ में रखकर हिदायत का और रोशनी का मेन कंट्रोल अपने हाथ में रख लिया, अल्लाह की जात है। ना किसी को हिदायत नसीब होती और ना दुनिया में रोशनी होती, लोग अंधेरों में भटकते रहते और दुनिया से चले जाते। और हदीस से भी अल्लाह सुबहान तआला का नूर होना साबित है। सही बुखारी की एक रिवायत है, अल्लाह तआला के नबी तहज्जुद के वक्त एक दुआ मांगा करते थे जिसके अंदर अल्फाज आते हैं, वलकल हमदु, दोहरा लीजिए चलिए, वलकल हमदु अंता नूरु समावाती वल अर्द वमन फीहिन्ना। बहुत तवील दुआ है जिसका छोटा सा हिस्सा आपके साथ दोहराया, तर्जमा क्या है, और तेरे ही लिए सारी तारीफें हैं और तू ही नूर है आसमानों और जमीन का और जो कुछ उसके बीच में है। तो गोया कि आप कह सकते हैं कि अल्लाह की जात नूर है, इसका हिजाब नूर है, हर जाहरी और मानवी नूर का खालिक, इसको अता करने वाला और इसकी तरह हिदायत करने वाला अल्लाह सुबहान तआला। चलिए अब इतना काफी है क्योंकि फिर इसको दोबारा दोहराएंगे, आगे चलते हैं। इतनी बात को समझने के बाद अब अगली बात क्या है कि मसलु नूरी ही, उसके नूर की मिसाल, यानी हमने थोड़ा सा समझ लिया कि अल्लाह का नूर क्या है, अल्लाह कैसे नूर है, तब सवाल पैदा होता है कि इसके नूर की कोई मिसाल है दुनिया में, या नोट कीजिएगा बड़ा बड़ा लिख ले, अल्लाह की मिसाल नहीं है ये, अब अल्लाह के नूर की मिसाल है। सूरत शुरा में अल्लाह सुब्हान तआला खुद फरमाते हैं कि लैसा कमिस्लिही शैय, उसकी तो मिसाल जैसी भी कोई चीज नहीं है, तो फिर हम अल्लाह की मिसाल कैसे दे सकते हैं अगली आयत से। ये देखिए, ये मैं इतने जिसको कहते हैं दबा दबा के लफ्ज बोल रही हूँ, क्योंकि ये मुगालते हैं जो हम इस आयत की रोशनी में खुद ही बोल देते हैं अल्लाह की मिसाल ऐसे, अल्लाह का नूर बंदा मोमिन के दिल में नहीं। यहाँ अल्लाह की मिसाल नहीं बल्कि मसल नूरी ही, लफ्ज नूरी ही को हाईलाइट कर लें, अल्लाह की नहीं उसके नूर की मिसाल कैसी है, कमिश्कात, एक ताक की तरह। यानी अल्लाह का नूर ऐसे है जैसे एक ताक है। मिश्कात का लफ्ज, इसके दो रूट हो सकते, नहीं एक ही रूट है, बल्कि मिश्कात का रूट है शीन काफ वो। एक बहुत ही मारूफ किताब है अल मिश्कातुल मसाबीह, हदीस की किताब है जिसमें मुख्तलिफ अहादीस को जमा किया गया, बहुत ही खूबसूरत और मारूफ मजमू है, वो भी यही है। तो मिश्कात कहते हैं किसी चीज ताकचे को। ताकचा क्या होता है, जैसे आप कोई दीवार सोचे और उसके बीच में आप एक ऐसा सा कर्व दे देते हैं। पहले दौर में लोग एक तो अंगिठियां बनाते थे ना, दीवार के बाहर थोड़ी सी बड़ी भी जगह उसके ऊपर चीजें रखते थे। इसी तरह दीवार के अंदर एक ऐसा कर्व बना देते थे, और अमूमन उस दौर में जब चिराग जलाए जाते थे तो उन ताकचों में चिराग या मोमबत्तियां या लालटेने रख दी जाती थी। मकसद क्या होता था उसके बनाने का, क्लियर, क्योंकि दीवार के अंदर है, हवा बाहर से चारों तरफ पड़ेगी तो बल्ब वो सारी मोमबत्ती या जो भी लालटेन है वो बुझ सकती है, और अंदर होगी तो उसको सिक्योरिटी मिलेगी। एक ये वजह होती थी। दूसरी उसकी वजह क्या है जिसको आप पहले समझे, लालटेन, लालटेन देखी होगी कभी, चलती थी पहले भी दौर में, अंदर एक शोला होता है। आप अपने नोट्स में एक छोटी सी लालटेन बना ले तो ये सारी इंशाल्लाह ताला ज़मीरें आपको समझ आ जाएंगी। लालटेन के अंदर क्या कुछ होता है, सबसे पहले आप देखिए उसका एक नीचे पेंदा होता है, ठीक है, फिर उस पेंदे के अंदर तेल होता था, फिर उसके ऊपर बीच में से एक ऐसे सुराख के अंदर एक ऐसे धागे की बंदी हुई बत्ती सी होती है, और उस बत्ती को जब आग लगाई जाती थी तो उसमें से शोला निकलता है, ठीक है, फिर उसके बाद उस शोले के इर्द गिर्द एक शीशे का केज होता है। उस केज को समझ लें तो आपको ये मिशकात लफ्ज समझ आ जाएगा कि दो वजूहात होती हैं लालटन के बाहर के केज की। नंबर एक, हिफाजत, ताकि इधर उधर से हवा ना पड़े। आप ऊपर नीचे से बंद नहीं कर सकते, ये भी नोट कीजिए कि ऊपर नीचे से हमेशा खुला होता है, बंदा मोमिन का भी रास्ता ऊपर नीचे अल्लाह से जुड़ता है, फिर ही वो दुनिया के फितनों के मुकाबले में अल्लाह के रास्ते में खड़ा रहता है, ठीक है। तो वजह एक क्या है, हिफाजत। दूसरी एक वजह, लाइट का जो शीशा है ना उसकी क्या होती है, लाइट उसके अंदर से तो एक छोटा सा शोला निकलता है ना, वो जाके शीशे से टकराता है, और अगर आपने साइंस में पढ़ा तो शीशे की शान क्या है कि जब रोशनी उसको टकराती है ना तो रिफ्लेक्ट करती है, डिस्पर्स हो जाती है, तो शीशे के अंदर से रोशनी ज्यादा खुल के आती है। ये आपके हमारे शेंगलियर्स, फानूस, ये अभी भी जो लाइटें ऊपर लगी हुई है, अगर ये ऊपर से शीशे का कवर उतार देंगे ना तो लाइट बिल्कुल सीधी इधर नीचे पड़ेगी। अभी आप देख रहे हैं कि ये लाइट हर एक के सर पे छोटी छोटी लाइटें लगी हुई है ना, तो दूर से नहीं पता चलता, लेकिन आपको उसकी लाइट बिल्कुल पूरी अच्छी तरह खुलती हुई दिखती है। तो अल्लाह सुबहाना ताला की जो यहाँ बात है वो क्या है कि मसलु नूरी ही, उसके नूर की मिसाल का मिश्कातिन, एक ताकचे की तरह है, फीका मिसबाह, जिसके अंदर एक चिराग है, लालटेन में आ रही है, ठीक है, एक ताकचा सा एक उसका कवर बना हुआ, एक ताक है, रोशन चिराग उसके अंदर पड़ा हुआ है, और अल मिसबाहु, वो चिराग, फी सुजाजतिन, शीशे के एक फानूस में, बिल्कुल मोमबत्ती, आप इसमें अगर आप देख लें तो आपको पूरी वो लालटेन की तस्वीर बनती है। मिसबाह लिख लें शोले को जो अंदर जल रहा है, ठीक है, जुजाजा लिख लें शीशे का केस है, और कमिश्कात जो मिश्कात है वो पूरे का पूरी 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 लालटेन जो एक मिश्कात है। खैर, अल सुजाजा तो, और वो जो शीशे का केस है बाहर, इतना साफ चमकता खूबसूरत है, गोया के का अन्नहा, गोया के वो, यहाँ पे का मानिद आ गया के लिए, कैसा है वो, कौकबुन, सितारा है, दुर्रीयुन, चमकता हुआ। लफ्ज मिसबाह का मैं रूट बोल गई थी, बताना उसको वहीं सेट कीजिएगा। लफ्ज मिसबाह जो है ना, स्वार बा हा, सुबह का, अल्लाह ताला के बारे में हम पढ़ चुके हैं, फालिकल अतबाह, सुबह को पढ़ने, ये सब आला है, यानी ये एक चीज है। और जुजाजा, जी, जा, जीम, जीम, जज्जा, ठीक है, जुजाजा कहते हैं शीशे को, चमकदार, शाइनी, क्रिस्टल, कुछ भी कह ले। अब कान्हा कौकबन, कौकब का रूट रुबाई है, काफ वाव काफ बा, कौकब हमारे यहाँ नाम भी रखा जाता है। ये कौकब कहते हैं तारे को। यहाँ नोट कीजिएगा कि इस नूर को बताने के लिए ना तो सूरज का लफ्ज आया ना चांद का आया, बल्कि सिर्फ सितारे का है। क्यों? क्योंकि सूरज को भी ग्रहण लग जाता है, चांद को भी ग्रहण लग जाता है, लेकिन सितारों को ग्रहण नहीं लगता। बजाहर उनके मुकाबले में इनकी रोशनी कम ही क्यों ना हो, लेकिन हमेशा रहती है। और अल्लाह को ऐसा ईमान मतलूब है कि जो हर हाल में चमकता रहे। कौकब कैसे है? दुर्रीयुन, लफ्ज दुर्री के दो रूट है, दाल रौ रा दुर। दुर्रुन कहते हैं चमकदार को, ठीक है, तो मानी क्या कि वो बहुत चमकता हुआ है। दूसरा इसका रूट है दाल रा हमजा। आप मुझे बताएंगे इस रूट से इस सूरत में और सूरह बकरा में क्या लफ्ज आया? जी, अभी दूसरे सबक में हमने बात की थी, नहीं याद आपको? यदरा का लफ्ज, हटाना। और गाय के वाक्य में क्या पढ़ा था? फदारा तुम फीहा, पर तुम एक दूसरे से इल्जाम को दूर करने लगे। तो सितारा चूके अंधेरों को दूर करता है, उसलिए भी उसको दुर्रिन कहा जाता है। तो गोया के एक सितारा है जो चमकता हुआ भी है। असल में इस मिसाल में इंसान के सीने को ताक, अब वो जो फिगर बनाई भी उसमें लिख लें, इंसान का सीना है ताक, दिल है चिराग, दिल के अंदर ईमान जो है वो है निस्वा, जो अंदर चमकता हुआ शोल है। इंसानी पसलियों का ढांचा अगर हम देखें ना, जिसको सीना कहते हैं, डायफ्राम, तो आप देखें वो बिल्कुल ऐसे होता है, नीचे से तंग होता है, ऊपर से चौड़ा होने लगता है और ऊपर से तंग होता है। निचले धड़ के मुकाबले में अमूमन सीना मुख्तलिफ होता है। निचले धड़ के अंदरूनी हिस्से को सीने के अंदरूनी हिस्से से अलग किया जाता है। तो गोया के बंदे मोमिन का दिल है जो नूरे ईमान से जगमगाता है। और ये नूरे ईमान मजमुआ है नूरे फितरत, जो पहले से इंसान की रूह में था। हदीस में ऐसा कि बच्चा जब पैदा होता है तो वो फितरत के नूर पर होता है, बाद में फिर उसके माँ बाप उसको अपनी मर्जी के दीन पर ले आते हैं। तो गोया कि आप कह सकते हैं कि सबसे पहले एक इंसान के अपने अंदर फितरत का नूर था, उस पे दूसरा नूर मिल जाता है, नूरे वही रेवलेशन। नूर कौन सा? कि पहले फितरत में अल्लाह ने अपनी पहचान डाली हुई थी और उसके बाद अल्लाह सुबहाना ताला ने उस बंदे तक वही का पैगाम पहुंचा दिया। वो नबी सल्लम के दौर में था, तो इकरा बिस्मी रब्बी कल्लसी की वही सुनी और बस ईमान आ गया। और अगर आज के दौर में कहते हैं तो कुरान की वो आयतें जो दिन रात हम पढ़ते थे, वो अब हमारे अंदर दिन रात आने लग गई। तो पता क्या चला कि अल्लाह के इस नूर से फायदा उठाने के लिए जरूरी है कि इंसान की फितरत का नूर मसख ना हो। ये ऐसे है कि जैसे हम देखते हैं, हम कहते हैं हम आंखों से देखते हैं, ऐसे ही कहते हैं ना, चले आंखें ठीक हो आपकी, बाहर अंधेरा हो तो कुछ दिखता है? अगर आप सिर्फ आंखों से देखते होते तो फिर अंधेरे में क्यों नहीं देखते? आंखें तो होती हैं। तो गोया के पता चला कि सिर्फ आंखों से नहीं देखते तो किससे देखते हैं? ये बाहर की रोशनी से भी देखते हैं, सूरज की हो या आर्टिफिशियल हो जो रात को हम जलाते हैं। चलिए, सिर्फ सूरज की रोशनी हो, आंखें ना हो, तो क्या नाबीना देख सकते हैं? बात समझ आई? यही कैफियत है। अंदर फितरत की जो रोशनी थी, जिससे अल्लाह ने मुझे और आपको और हर क्रिश्चियन और जी और बुद्धा और एथियस्ट हर एक को पैदा किया था, वो भी जलती रहे, माहौल का असर ना हो, माशरे का असर ना हो, गलत रसूमात का रस्म असर ना हो, तो जो ही वही उस बंदे की जिंदगी में चमकती है तो वो यूं लपक के उसको ले लेता है कि यू कदम शरत मुबारकतिन जैतून, कि वो चिराग जलाया जाता है जैतून के एक मुबारक दरख्त से। जैतून का तेल यहाँ तस्करा इसका हुआ, पीछे सूरह फुरकान में भी इस पे बात हुई थी, आगे एक से ज्यादा जगह इसकी बात हुई थी। तेल से यहां मुराद इल्म है, वही का इल्म जब बंदे मोमिन के दिल पर पड़ता है, जितना प्योर इल्म उसको मिलेगा तासुबात से पाक, अंधेरों से पाक, तो उस बंदे का हाल क्या होता है? वो फिर चमकने लगता है। कौन सा तेल है? बेहतरीन तेल, ना शर्कियत वला गर्बिया, ना वो तेल मशरकी है, सॉरी ना वो दरख्त मशरकी है ना मगरबी है। पहली बात इससे ये पता चलती है कि दरख्त अकेला नहीं है, उसके इर्द गिर्द बहुत सारे दरख्त हैं, और वो अपने सारे दरख्तों के ना तो बिल्कुल ईस्टर्न साइड पे ना वेस्टर्न पे, या बस आप एक लिख लीजिए कि इज्तमाइयत का दर्स है, कि जैतून का बेहतरीन दरख्त कौन सा होता है जो बहुत सारे दरख्तों के बिल्कुल बीच में हो। अगर मशरकी होगा, चढ़ते सूरज की रोशनी पड़ेगी, तो ढलते सूरज के वक्त वो ठंडा हो चुका होगा। अगर मगरबी सिरे में किसी बाग के दरख्त लगा दे, तो वो सुबह को ठंडा रहेगा, लेकिन सूरज गिरे ढलेगा तो उस वक्त उसके ऊपर रोशनी आएगी। अल्लाह कहते हैं नो, बिल्कुल मिडल, ये है मॉडरेट नेशन। दीन को फायदा तभी मिलेगा जब दीन देने वालों के नंबर एक इल्म का सोर्स कैसा होगा, शजरत मुबारक, पाक, तासुबात से पाक, दुनिया की मोहब्बतों से पाक, शख्सियत परस्ती से पाक, हर किस्म के अफकार से पाक, नजरियात से पाक, जो सिर्फ और सिर्फ कुरान और सुन्नत के मुबारक तेल से चमकेगा, और बगैर अपने किसी जाती फायदे के हसूल के सिर्फ और सिर्फ लोगों को रोशनी देने के लिए चमकेगा। जब ऐसा तेल पड़ता है तो होता के यकादु ज़ैतुहा युदीयु, करीब है कि इसका तेल खुद ब खुद जल उठे, वलौ लम तमसस्हु नारुन, अगरचे भी उसे आग ने छुआ भी ना हो। तेल का लफ्ज आया तो जरा तेल की भी मुख्तलिफ कैफियात समझ लीजिए। आपने और मैंने आज के दौर में तो ये चीज नहीं देखी, लेकिन आप देखिए कि तेल जब लफ्ज बोलते हैं तो अमूमन मुख्तलिफ किस्म के तेल जहन में आते हैं। पुराने दौर में आप देखिए, जलाने के लिए कुछ तेल बोल लगते थे, कुछ इस्तेमाल भी होते थे। मसलन सबसे पहले आप देखिए, दिए में जलता था तो सरसों का तेल जलता था, हमारे यहाँ जिसको कड़वा तेल भी कहते हैं, बहुत गाढ़ा कसीफ किस्म का होता है। और इस तेल के अंदर डिप किया हुआ दिया, बास दफा उसको दिया सलाई भी जाके करीब कर दी जाती थी ना, फिर भी आग नहीं पकड़ता था। इसलिए उस तेल के अंदर कॉटन की एक बत्ती सी, जिसको आप वो कहते हैं ना रुई का या कपड़े का, एक फीता से बना के रखा जाता है, उस कपड़े को आग लगती है, फिर बिल आखिर वो कपड़ा काफी देर उस आग में जब जलता है तो फिर वो तेल जलता है। यानी सरसों के तेल को अगर आप डायरेक्ट माचिस की तीली दिखाएं तो ये नहीं जलता, ठीक है। इसके मुकाबले में एक और तेल है आज के दौर में जिसको पेट्रोल कहते हैं, पहले दौर में एक और तेल था मट्टी का तेल, उसकी क्या शान है, जलने के लिए हर वक्त बेताब है, गलती से भी उसके पास एक चिंगारी किसी ने फेंक दी तो यूं जलेगा कि आग लग जाएगी। इसीलिए कहते हैं ऐसी चीजों को दूर रखें, बच्चों से दूर रखें, ये रखें वो रखें। क्या पता चला इधर तेल से मिसाल क्या है, कि जैतून का आला तेल कौन सा है जो उन लोगों का जिन्होंने नूरे फितरत को पा लिया। अब यहाँ इस तफसीर को जरा से साइड पे रोकती हूँ मैं, और आपको दिखाना चाहती हूँ एक छोटी सी बात, ताकि आप इस पूरी मिसाल को अच्छी तरह से समझ सकें कि अल्लाह का नूर तो फैल गया, थोड़ी थोड़ी हमें बात भी समझ आ गई है, इस नूर से लोग कितने लोग हैं जो हिस्सा पाते हैं। सवाल वैसे करूं दोबारा, सूरज निकल रहा है, कितने लोग हैं जो सूरज की रोशनी से फायदा उठाते हैं और कितना उठाते हैं, पहले चले इसको अपने लफ्जों में समझ लीजिए। आप देखिए कि सूरज की रोशनी से फायदा कैसे आप उठाएंगे, नंबर एक बिल्कुल बाहर जाके सनलाइट के नीचे खड़े हो जाए, लिखे जरा
ये बात आसान कर देगी बाकी सारी बात को समझना।
अब जब आपने सूरज की बिल्कुल सनलाइट में खड़े होकर चीज को देखा तो कितना नूर आप लेंगे, बहुत सारा लेंगे। शेर अगर आईना ही देख रहे हैं, अपना आईना देख लीजिए, चेहरा देख लें आईने में सूरज की रोशनी में, तो आपको समझ आ जाएगा कि आपने बहुत ज्यादा देख लिया। इसी तरह एक दूसरी कैफियत पे आ जाए, डायरेक्ट सनलाइट नहीं आप खड़े हुए, आप इस कमरे में आके खड़े हैं लेकिन बाहर अंदर कोई और लाइट नहीं जल रही, थोड़ा सा फर्क हो जाएगा ना, चेंज हो जाता है। अब तीसरी सूरत, सन ग्लासेस पहन लें, सूरज से भी बाहर कमरे में और कमरे में बैठ के सन ग्लासेस पहन लें, क्या समझ आएगा, कुछ भी नहीं समझ आएगा, बस नूरे ईमान
हासिल करने वालों के यही तीन दर्जे मुफ्त में लिखा रही हूँ आपको।
अगर आप गौर से देखें तो जितने भी दो लोग इस दुनिया में है ना आज, ये सब किसी ना किसी रास्ते से अल्लाह की तरफ जाते हैं। हर एक का अपना मिजाज है, अपनी तबीयत है, हर बंदा अपनी मर्जी से इन चीजों को लेता है। सबसे पहला गिरोह जो अल्लाह के नूरे हिदायत से हिस्सा ले लेता है ना, वो सिद्दीकीन का गिरोह है। लिखिए सिद्दीकीन, ये वो लोग हैं जिनकी फितरत सलामत है, साले हैं, दिल का आईना साफ है और दिल जिंदा है। इनकी रूहें इतनी बेताब है जैसे तेल जलने के लिए तैयार है। जो ही इनको ईमान की दावत मिलती है ना, ये फौरन मान जाते हैं। इसमें कौन कौन आते हैं? नंबर एक अंबिया कराम, और नबियों में हजरत इब्राहिम के बारे में सूरत सौफात आयत 84 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इस जा रब्बहू बिकल्बिन सलीम, जब वो कल्बे सलीम लेकर अपने रब के हजूर पेश आया, पर वो मसख शुदा नहीं थी। आप कह सकते हैं कि इनके दिल पर ना तो कोई पर्दा है और ना जंग लगा हुआ, इनके दिल जिंदा और बेदार है। ऐसे लोगों के लिए रामा इकबाल कहते हैं, मुझे ये डर है दिले जिंदा के तू ना मर जाए, मुझे ये डर है दिले जिंदा तू ना मर जाए, कि जिंदगानी इबारत है तेरे जीने से। यही है वो लोग जिनके लिए सूरत पाक आयत 37 में अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, लिमन कान लहू कल्बन, कि ये बात तो बस उसको समझ आएगी जिसके पास दिल होगा। अभी भी ये बातें उसको ही ज्यादा अच्छी समझ आएंगी जिसका दिल सलीम होगा। कल्ब सबके अंदर होता है, लेकिन बेदार कल्बे बेदार ये हर एक के पास नहीं होता। ये वो लोग होते हैं जिनको अंदर से कमी महसूस हो रही होती है, आज हो रही है, हकीकत वो नहीं है जो हम जी रहे हैं, जिंदगी वो नहीं है, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, ये क्या सुबह सुबह मैं उठती हूँ एक ही काम पे चल रही हूँ, ये है वो है। ऐसे लोग मुंतजिर होते हैं, और जैसे सलम के दौर में भी ऐसे लोग थे, तो फैल दौसी का नाम मेरी जुबान पर फिर आ जाता है। कुफर के दौर में भी बुत नहीं पूछते थे, शराब नहीं पीते थे, लोगों को बुत प्रस्ती करते देख के कहते थे क्या बेवकूफी है मट्टी के बुतों पे, हालांकि कोई फिर नूर नहीं इनके पास आया वही का भी। तो ये वो लोग हैं जिनके अंदर होती है पहले से तड़प कुछ पाने की, जो इन हकीकतों से देखी ना जा सके, जिस पे बड़ी कोई हकीकत नहीं, जो इन कानों से सुनी ना जा सके, इस पे यकीनी कोई बात नहीं है, ऐसे लोग तड़प रहे होते हैं। और जो ही उनके पास अल्लाह की बात आती है वो फौरन मान जाते हैं। इसके बाद इनमें दर्ज है हजरत अबू बकर सिद्दीक का। नबी सल्लम ने इनके बारे में फरमाया, मा अरदतुल इस्लाम अला अहद इल्ला कानत लहू कुरबतुन इल्ला अबू बकर, मैंने जिस शख्स के सामने भी इस्लाम की दावत रखी, इसने कुछ ना कुछ तवक्कुफ तो जरूर किया, हेजिटेट किया, सोचा, सेकंड थॉट ली, लेकिन अबू बकर ने ऐसा ना किया, उन्होंने तो एक लम्हे का भी तवक्कुफ नहीं किया, फौरन मान गए, क्योंकि अंदर पहले से तड़प थी। तो लेकिन आपको प्यास लगी हुई है, तो कोई आपको के पानी पिएगी तो आप हाथ ही बढ़ा देंगे कि जल्दी से दे दो, बस आप इसके अंदर अपनी समझ के लिए कोड वर्ड लिख लें प्यासा। सिद्दीक कौन है? प्यासा, नूर ईमान का प्यासा, हिदायत पे आने का प्यासा। जो ही पानी को पेश करता है वो उसको ले आता है। यहाँ जो मिसाल है ये इसी सिद्दीक की मिसाल है कि अल्लाह नूर السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، اور اگر سے اس کو آگ چھوئے بھی نہ، نہیں چھوئی اس کو آگ، नूर नला नूर, ये तो नूर पे नूर हो गया। क्या नूर है भाई? फितरत के नूर पर वही का नूर पड़ गया, इनके नूर पर अबे का नूर पड़ गया, नफसी बातों पे अमली बातों का नूर पड़ गया, ऑल ऑफ इंतजार खत्म हो गया, जो सोचता था वो अब करने लग गया। नूर ही मैं ये शाह, और अल्लाह जिसको चाहता है अपने नूर की तरफ रास्ता दिखाता है। वह यद्रीबुल्लासी, और अल्लाह बयान करता है लोगों के लिए मिसालें। वह बिकुल्ली शही नलीम, और अल्लाह तला हर चीज को खूब जानने वाला है। तो गोया की इस एक आयत में सिद्दीकीन के ईमान की बात है। इनके दिल साफ होते हैं, इनकी फितरत बेदाग होती है, रूह बेदार है, बेताब है, जिंदा दिल है, नूरे ईमान आया तो नूर उनला नूर बन गए, इनका हाल है। वो कहते हैं ना कि नगमे बेताब है तारों से निकलने के लिए, एक जरा छेड़ तो दे जख्म मिजराबे हयात। यानी बस इनको आप कुरान के पहले सबक में बुला लें, फिर इनके इल्म का, अमल का, मोहब्बत का सफर शुरू हो जाता है। ये नहीं रुकते, ना दिल में कभी शुबा आया, ना डाउट आया, ना मुश्किल लगा अल्लाह का कोई हुक्म। इनको सूरत और मुश्किल नहीं लगती, इनको हिजाब और पर्दे और सेग्रीगेशन के हुक्म मुश्किल नहीं लगते, ये चलते ही रहते हैं। ऐसे लोग इन शहीद, इसमें नसीहत है उस शख्स के लिए जो दिल रखता हो, जो तवज्जो से बात को सुने और जो खुद हाजिर भी हो, यानी ये उनका हाल है। अल्लाह अकबर। इमाम इब्ने तैमिया का नाम आपने सुना होगा, इमाम इब्ने कय्यम के शागिर्द थे। अल्लाह बाज़ अपने शागिर्दों से ज्यादा काम ले लेते हैं, बाज़ उस्तादों से, दोनों की बड़ी शान है। इब्ने तैमिया उस्ताद थे, कय्यम जो थे वो, यानी इब्ने तैमिया जो थे ये शागिर्द इब्ने कय्यम के शागिर्द थे। इन्होंने अपनी एक किताब है अल फवाइद, उसका नाम है, इस आयत के बारे में लिखते हैं। मैं आपको एक बार के सुना देती हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब वो कुरान पढ़ते हैं तो महसूस करते हैं कि कुरान मुसफ में लिखा हुआ नहीं है बल्कि इनके लौहे कल्ब पर लिखा हुआ है, गोया कि अपनी फितरत और कुरान में इतनी कामिल मुताबकत महसूस करते हैं। और ये मुकाम सिर्फ सिद्दीकीन को हासिल है। जरा से रुकते हैं, इस पान से छह फुट के जिस्म पे आ जाए। पूरा कुरान तो अभी आपने नहीं पढ़ा, माशाल्लाह 18वें पारे का सलास हो रहा है। आप अपने दिल को कैसा पाते हैं? देखिए, इस वक्त झूठ नहीं बोल सकते आप खुद से, बस खुद इख्तसाबी कर लें। इन 18 पारों में और इन तकरीबन 24 सूरतों में कितनी दफा मेरा दिल ऐसे हुआ जैसे सिद्दीक का दिल होता है। लम तम सस्कुनार, लंबी बातें कोई ना भी कह सके और उनकी जिंदगी एक ऐसी जिंदगी होती है कि कुरान के और उनके बीच में कोई फर्क नहीं है, और उनका अपने दिल पे उतरता हुआ ये कुरान महसूस हुआ। हर हुक्म वाली आयत में उन्होंने खुद को सामने रखा और रुखसत वाली आयत में उन्होंने दूसरों को रुखसत दी। साफ दिल, पाक दिल, पाक दिल, दिल के आईने पे जब गर्द पड़ती है ना तो कुरान का असर नहीं होता। ये ईमान जो है ना, ये बहुत खूबसूरत चीज है। आज मैं और आप इसकी बस बातें ही कर सकते हैं। और याद रखिए, ये ईमान शुरू में टिमटिमाता है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है। कभी आपने देखा होगा कि जब हम दिया सलाई दिखाते हैं ना दिए को, तो शुरू में पतली सी वो लिड जलती है उसकी, ऐसे शोला, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाता है और फिर एकदम पूरी कैंडल जल पड़ती है। इसी तरह ईमान शुरू में आहिस्ता आहिस्ता आता है, फिर आहिस्ता सारा जिस्म रूह मुनव्वर होती है। सबसे पहला चिराग जला था वही की सूरत में अल्लाह के नबी के दिल पे, वो दिल इतना पाक था का नहजु जा, उसकी चमक पड़ी तो सहाबा के दिल पे पड़ी। सहाबा ने उसको यूं लिया कि नूर नला नूर, और उसके बाद आज हमारे ईमान है। ये जो सुजाजा की शीशे की एक चौखट है ना बाहर, ये हमारी शरीयत भी है। इस्लाम एक मुकम्मल शरीयत है, चमकती भी, कोई इसमें लूप होल नहीं है, कोई धब्बा भी नहीं है कि ये नहीं होना चाहिए था फितरत में। किसी की आप तलफी नहीं करता इस्लाम। जिसका दिल मुतमईन होता है वो फौरन इसको लेके चल पड़ता है। और याद रखिए कि ईमान यक रुखी चीज नहीं है। आज के दौर में 3D पिक्चर्स का बहुत रिवाज है। आप में से किसको नहीं पता 3D क्या होता है, बस वो हाथ खड़ा कर दे, वरना मैं समझूंगी कि सबको पता है। अलहमदुल्ला आप सबको पता, आपको नहीं पता। लेकिन पहले दौर में ये तस्वीर ऐसे होती थी, जैसे मेरे पास इधर है नहीं, मिसाल है कि जैसे ये CD का सामने का शक्ल है, अगर इस पे कोई टाइटल है तो ये पिक्चर थी ना, तस्वीरें ऐसी होती थी ना, हम खड़े यार तस्वीर थी। और अगर आप 3D पिक्चर ले तो वो यूं है, जैसे ये तस्वीर पूरी आपको मूव होती हुई दिखती। 3D को 3D कहते हैं। TV कंप्यूटर पे भी बेशुमार मूविंग दिखती है, हर एंगल से वो चीज सामने आती है। ईमान एक 3D चीज है, इसका असर जिंदगी के हर पहलू पे पड़ता है। नूर नला नूर, इसकी रोशनी फैलती है, ईमान हर तरफ बढ़ता है। ये नहीं हो सकता आपकी आंखें ईमान के नूर में तो हाथ नंगे है, और कान नहीं है तो दिल नहीं है, सर ईमान के नूर में बसा हुआ है तो आपका चेहरा नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। रोशनी का लॉस सोचिए ना, रोशनी हर तरफ एक जैसी फैल जाती है। इस तरह जब दिल में ईमान आता है ना, हर तरफ फैल जाता है। आपकी शख्सियत बेहतर, आपका किरदार बेहतर, آپ کے لوگوں سے تعلقات بہتر، آپ خوش رہتے ہیں، آپ سمائلی رہتے ہیں، آپ کی زندگی ایک نیچرل زندگی ہے، لوگوں میں جاتے ہیں ان کی خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں، ان کے غموں میں غمی ہوتے ہیں، لیکن دل اللہ کی طرف. وہ کہتے ہیں نا، ہتھ کام کار والتے دل کسی اور والے، دل میں اللہ کی محبت ہے. جو ہی ایمان والا اکیلا ہوتا ہے، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا کہ جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. اللہ اللہ، وہ دل کی دھڑکنوں سے وہ کام لیتے ہیں جو تسبیح پہ لوگ لیتے ہیں، اللہ اللہ لا الہ الا اللہ، ان کے دل کی ہر دھڑکن میں لب اللہ ہوتا ہے. یہ ہے صدیقین کا درجہ، اور یہ ہے اس آیت کے اندر، یہ ہے مطلوب مجھ سے اور آپ سے. اس کے لیے کوئی آپ بائی پارٹ ایمان نہیں لا سکتے. سوری، جیسے آپ پارٹ ٹائم ایجوکیشن تو لے لیتے ہیں نا دین کی بھی، بائی پارٹ ایمان نہیں ہوتا وہ، پھر کہیں نہ کہیں آگے دوسری جو دو مثالیں بھی دوں گی ان میں کہیں ہوگا. سچا ایمان مکمل دے جاتا زندگی میں. صحابہ بھی تو دیکھیے ہر طرح کے تھے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آج ہم اپنے اور صحابہ کے ایمان کا تقابل کریں تو ہم تو وہ چھوٹے چھوٹے کمکمے ہیں، جگنو، واللہ ہی جگنو ہے. اگر آج ہمارے دل صاف ہو، آج ہم ایمان کا وہ علم، جو علم کا وہ تیل جو لے رہے ہیں، یہ صاف ہو، تعصبات سے پاک، پھر کباریت سے پاک، مسئلہ کی جنگ سے پاک، ذاتی فوائد سے پاک، لیڈرشپ کی باتوں سے پاک، مسجدوں کی چدراہٹ سے پاک ہو، اگر پیور علم مل جائے تو ہم چھوٹا سا بھی کمکمہ بن گئے تو واللہ ہی ہم اپنے حصے کی روشنی کر کے جائیں گے. امیجن کریں نا، ایک اندھیرے والا کمرہ ہے، اب وہاں پہ ایک بڑا سا فانوس جلا دیں، نمبر ایک. یا آپ جیسے آپ کا یہ روم ہے، اس کی مثال لے لیں، اس میں اگر آپ کہہ رہے ہیں تو میرا خیال ہے 25-30 کے شاید 40-50 بلب چھت پہ لگے ہیں چھوٹے چھوٹے. ایک بڑا بلب نہ ہو کہیں تو کیا بیٹھے رہیں گے؟ بہت سارے چھوٹے جلا دیں. میں اور آپ یہ چھوٹے چھوٹے بلب ہیں، اگر ہم سب جتنے بیٹھے ہیں اتنے بلب اگر اس سوسائٹی میں جل جائیں تو کیا نور نلا نور نہیں ہوگا؟ یہ شکوا کیوں کرتے ہو کہ کوئی ایک بڑا لیڈر نہیں ہے آج، کوئی ایک بڑا نیک نہیں ہے؟ ابو بکر آ جائے، عمر آ جائے، ابو بکر اور عمر آ جائیں گے، جلا کے رد کر دیں گے، ایک مسلمان نہیں بچے گا. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ آج صاحب ایمان نہیں ہے زیادہ، جو ہیں ان کی آواز سنیں تو گرجتے ہیں وہ، ماشاء اللہ ایمان کے جوش سے گرجتے ہیں. میرا اور آپ کا کام کیا ہے؟ شکوے کرنے کے بجائے صرف ایک بلب جلا دیں اپنے ارد گرد، اپنے گھروں میں، اپنے خاندانوں میں، اپنی دوستوں میں، اور سب سے پہلے یہ ہوگا آپ کی اپنی ذات میں. چھوٹی چھوٹی کندیلے بن جائیں، ایک بلب نہیں 100 بلب جل جائیں، ہم سے ہمارا کام لیا جائے گا. بعض لوگ ہوتے ہیں مومن ہیں، بہت معمولی سکلز ہیں میرے جیسے، واللہ ہی قسم کھا کے، اللہ کی قسم کہوں گی، کوئی ریاکاری نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، میں اس میں اپنے آپ کو کہتی ہوں، جن میں کوئی صلاحیت نہیں ہوتی، نو ٹیلنٹ ایٹ آل، کوئی خوبی نہیں، لیکن اندر ایمان کی چھوٹی سی چمک ہوتی ہے. اللہ معمولی صلاحیتوں کو ایمان کی روشنی سے دوسروں کو فائدہ دلوا دیتے. بعض لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر سکلز بھی بہت ہوتی ہیں، ماشاء اللہ، محدثین، امام بخاری، سکلز بھی بہت تھی، چاندنی راتوں میں بیٹھ کے لکھ گئے، امام احمد نے مسند احمد لکھی، آپ پڑھیے 25 جلدوں میں پڑھیے، ان میں سکلز بہت تھی، لکھتے بہت تھے، حق بھی بڑے تھے، فوٹو میموری تھی، ایمان بھی تھا، تو نور نور دنیا کو چمکا دیا. ابراہیم کو کیوں کہا کہ ابراہیم کا نام وطن سورت نحل میں پڑھا تھا؟ تو جب اندر ایمان بھی خوبصورت اور صلاحیتیں بھی اوپر، ایسے لوگ بھی دنیا میں ابو بکر، عمر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بن جاتے ہیں. اور جب صحابہ کا دور تھا نا، انہوں نے اسلام کو 3 ڈائمینشنلی پیش کیا تھا، ایمان تھا نا اندر، ہر شعبے کی اصلاح کی، ہر نظام بدلا، کمپلیٹ فلاحی ریاست بنا دی، ہر طرف سے وہ جمے رہے. ابو بکر کے اندر کا ایمان تھا تو اللہ کے نبی کی دنیا سے رخصتی کے جو اندھیرے تھے نا، اس میں اسلام کا دیا جلتا ہی رہ گیا. اگر ابو بکر کے اندر کا دیا بجھ چکا ہوتا نا، تو وہ 2 سال میں اسلام بھی مٹ جاتا، لیڈر تو چلا گیا تھا، اسلام بھی چلا جاتا. کیوں نہیں گیا؟ وہ کمزور سہاروں نے تھام لیا. تو لہذا صدیق بننے کی کوشش کرنی ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو پکا ایمان لے آتے ہیں, اور ایسا ایمان آتا ہے نا حالات جیسے بھی آ جائیں وہ نہیں پلٹتا. نہ ایمان دکھتا ہے, نہ ایمان پلٹتا ہے, نہ ایمان ہوتا ہے, وقتی طور پہ کم زیادہ ہوتا ہے. آپ بخاری میں پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ جمعے کی کلاس میں جو لوگ آ رہے ہیں, ایمان کے درجے, ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے کم بھی ہوتا ہے. اچھا اب آپ دیکھیے کہ یہ ایمان جب آتا ہے یہ سب کچھ ہو گیا, اب اس کا اثر بھی ہو گیا. اب آپ امیجن کیجئے کہ اندر تو شولا بہت خوبصورت ہے, تیل بھی بڑا اچھا مل گیا آپ کو, لیکن جو باہر کیج ہے شیشے کی جگہ آپ نے لیٹ سی پلاسٹک کا لگا دیا. بعض سستی محبت, بعض سستی لائٹوں میں ہوتے ہیں نا, جیسے آپ کے ہمارے جو کیا ہوتے ہیں سائڈ ٹیبلز, آپ نے دیکھا ہر سائڈ ٹیبل پہ جو ٹیبل لیمپ ہوتا ہے اس کے باہر پھر کور ہوتا ہے, کوئی گتے کا لگا دیتا ہے, کوئی پلاسٹک کا لگا دیتا ہے, تو اس سے روشنی کم ہو جاتی ہے نا. اچھا آپ سوچیں کہ شولا تو اندر بہت اچھا تھا, تو جو باہر کور ہے نا دھبے پڑ گئے ہاتھ کے, لالٹین کے اوپر دھبے پڑ گئے, تو روشنی کیا ہوگی؟ کم ہو جائے گی. اب اس بات کو سمجھیے, مکہ میں صحابہ کے ایمان تو بڑے پختے تھے, علم بھی بڑا پیور مل رہا تھا, براہ راست اللہ کے نبی کی سے مل رہا تھا, لیکن باہر کا ماحول یعنی وہ جو کیج تھا نا زجاجہ, وہ غبارہ لے تھا, اس لیے اسلام جلدی نہیں پھیلا. آج آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے, اللہ نے آپ کو ایمان دے دیا 18 پاروں سے, لیکن ابھی گھر کا ماحول موافق نہیں ہے. ویسے ہمارا خیال ہوتا ہے کہ ہمارا موافق نہیں, ہم سب کا بہت موافق ہے الحمدللہ, دعا کریں کہ اللہ اس کو اور موافق کر دے. غبارہ لوں تھا, روشنی نہیں پھیلی. مدینہ میں آ گئے, وہی مان تھا, کچھ اور بڑھ گئے لوگ, لیکن جو باہر کا شیشہ تھا وہ صاف ہو گیا, تو ماحول بڑھ گیا. پتہ کیا چلا کہ سچا مومن جب اچھے ماحول میں بھیج دیا جاتا ہے تو نور و نلا نور. اب اس کو اپنے اوپر لیجئے, ایک بچی پڑھتی ہے قرآن, اب آپ اپنے اوپر لے لیں, ساری لے لیں, آپ کے بھی اندر مختلف درجے کا ایمان آ رہا ہے. اگر سب کا ایمان ایک ہی درجے کا ہو, اللہ کرے کہ صدیقین والا ہی ہو جائے, ہمیں ہر چیز سے پیارا ہمارا ایمان ہو جائے, آپ کو اگلی زندگی میں جانا کدھر ہے؟ یا آج آپ گھروں میں جاتی ہیں تو آپ کے ماحول کے ہیں, اس سے آپ کی چمک کم زیادہ ہو جائے گی. اس لیے لازم ہے, ماں باپ کا فرض بنتا ہے کہ اپنے شیشے جیسے چراغ بچیوں کی صورت میں جو گھروں میں جب دیں تو زجاجہ میں دیں, پاک دل, صاف دل, بے عیب, با کردار لڑکوں کو اپنی بچیاں دیں. وہ ماحول نہ ہو کہ جہاں کہتے خیر ہے سب ٹھیک ہو جائے گا, وہ غبار آئے گا تھوڑے دن بعد بچیاں ہی خراب ہو جائیں گی. آپ دیکھیں کہ وہ جو زجاجہ کے جو کور ہے نا, میں اس کو ذہن میں لا رہی ہوں, اوپر نیچے کریں, ایک موم بتی جلائیں, بالکل ٹیبل پہ رکھیں, چلتی رہے گی, گلاس لیں شیشے کا, آپ پورے کا پورا گلاس اس کے اوپر ڈال دیں, یعنی اس شولے سے اوپر ہوگا, کیا ہوگا تھوڑی دیر میں بند ہو جائے گی, ماحول بند کر دیتا ہے, گھٹ جاتا ہے انسان. آپ کو اظہار چاہیے, آج آپ بھی سب شادی شدہ عورت ہیں, اگر آپ اپنے اس ایمان کو جو آپ کو یہاں سے مل رہا ہے گھر جا کے اظہار نہیں کریں گے, گھٹ جائیں گے ان کے اندر, تھوڑے دن میں آپ کا نور ختم, یا شیشہ پڑ جائے گا. دوسری صورت یہ ہوتی ہے, اگر اندر شولہ زیادہ ہو اس کا ایکسس نہ ملے. میں تو بچپن میں سوچتی تھی کہ اوپر نیچے سے شیشہ توڑ کیوں دیتے ہیں, آپ نے لال ڈنڈا دیکھا نا, اوپر بھی اتنا سب ہو نیچے بھی, اس کی وجہ یہ کہ ہوا کراس ہوگی. آپ کو اپنے اس ایمان کو ابھی سے گھر میں پیش کرنا, اگر آپ اس کو اپنے اندر ہی گھوٹ رہے ہیں تو آپ مومن تو بن جائیں گی, محسن کبھی نہیں بنے گی. اور یاد رکھیے کہ مومن اور محسن بننے کے بیچ میں تزکیہ ہے, تزکیہ نہیں ہوگا نا تو پھر آپ نہیں چمکیں گے. چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھنا, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شکوے, دلوں میں تعصب, گندگی, برائی, خرابی خرابی, آپ نہیں بن پائیں گے, اپنی موت مر جاتا ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں ہماری تاریخ میں پکے مومن تھے, دوسروں کو فائدہ نہیں دے سکے, کیوں؟ اندر ایمان موجود تھا لیکن وہ کوشش نہیں کر سکے. چلیے ایک اور چیز سوچیے, چونکہ شیشے کی بات ہو رہی ہے تو شیشے میں سے بیسٹ شیشہ کیا ہوتا ہے؟ کرسٹل ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ کرسٹل کب بنتا ہے؟ کٹ یوں اینگل سے آپ میرے ہاتھوں کو دیکھنا, ٹک 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 ٹک, بیسٹ کرسٹل کے اندر سب سے زیادہ کٹس ہوں گے. ایک دفعہ روشنی اندر چلی جائے تو اندر ہی گھومتی رہتی ہے, ادھر گئی ادھر چمکی چمکی, ویسے اسپارک ہی ہوتی رہتی ہے. وہ مومن جو مشکلات میں سے نکل کر مومن بنتا ہے, اس کی چمک معاشرے میں زیادہ رہتی ہے. اگر ہمیں دین کے راستے میں مشکلات نہ آئیں, ہمارے سارے ماحول موافق ہو جائیں تو ہمارا نفاق کھل جائے گا. میں نے کئی دفعہ جملہ بولا کہ بہت سارے لوگوں کا نفاق مجبوریوں کی اوٹ میں چھپا رہتا ہے. شکر کریں کہ وہ مجبور ہے, ان پہ پابندی لگا رہا ہے, ماحول موافق نہیں. اگر پابندیاں ہٹا دو انہوں نے کرنا کرانا پھر بھی کوئی نہیں. کوئی مجبوری بھی نہیں جس دن ہوتی نا ہمارے پاس. مثال ہے بیمار ہے, آج تو بیمار بھی کوئی نہیں, اب کیا کریں, اب کوئی وجہ نہیں سمجھ آ رہی, سستی آ گئی. آج شور نہیں سن کرے, آج شور کریں چلی جاؤ, کر لو کام, یہ پھر نہیں کر رہے, وہ پھر سستیوں کے گھیرے آ جاتے ہیں. تو جتنا اپنے آپ کو دین کے لیے چمکانا ہے مشکلوں میں ڈالیں, لیں رسک, اور جتنا چمکیں گے آپ کا معاشرہ, آپ کی معیشت, سب چمک جائے گی. آپ اکیلے نہیں چمک سکتے, پھر آپ کی کیا چیز چمکے گی؟ نمازیں ٹھیک ہو جائیں گی؟ نہیں. صرف عبادات نہیں, معاملات, اخلاقیات, ہر ہر چیز میں آپ کا, جس طرح روشنی ایک کونے میں نہیں آ کے چمٹ جاتی بلکہ وہ مختلف طرح سے رہتی ہے. شرط ایک ہے کہ آپ اپنے آپ کو رکھیں. میں جب اس آیت کو پڑھتی ہوں اور پڑھا بھی رہی ہوں نا, تو میرے ذہن میں لفظ مومن پتہ کیا آتا ہے؟ مومن از اکول ٹو چھن چھن کرتی ہوئی روشنی. وہ کہتے ہیں نا, ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے. یہ علامہ اقبال کی کبھی باتیں پڑھا کریں آپ روئیں گے. ان کا درد بہت سچا تھا اپنے دور کے. میں کہتی ہوں کہ اگر ان کی ظاہری چیزوں پہ نہ جائیں تو ان کی جو باتیں ہم پڑھتے ہیں اور جو اشعار ان کے ہمیں ملتے ہیں, ان کو پڑھنے کے بعد واقعی یقین آ جاتا ہے کہ انہوں نے قرآن کو اس کی گہرائی سے سمجھا. جتنا زیادہ آپ کے اندر ایمان آئے گا اتنا آپ لوگوں کے لیے خیر کا سبب بنیں گے. اور یہ ساری چیزیں ایک دن میں نہیں ہوتی, وقت لگتا ہے. لیکن اگر بہت سارا وقت بھی دے دیں, کبھی آپ نے سوچا موم بتی جلانے میں ساری اس کے اوپر کی بتی ختم کر دیں, کبھی ایسا ہوا ایک تیلی لگائی تو وہ نہیں جلی, تو وہ تھوڑی سی جو اوپر باہر اتنی سی اس کی بتی ہوتی ہے وہ جل جاتی ہے, پھر آپ دوسری جلاتے ہیں. اب ہوا کیا کہ موم بتی وہ ماچس کی تیلیاں تو ختم ہوئی, اینڈ پہ آخری تیلی جل گئی, اتنی دیر میں کیا ہو چکا ہوتا ہے, وہ بتی ختم ہو گئی ہے. اب کیا کریں؟ پھر کھوچیں, پھر اس کی موم کو ہٹائیں, پھر کریں. یہ سارے تجربے کبھی شاید آپ نے کیا. اسی طرح یاد سارے لوگ ہیں, مناسب حالات کے انتظار میں, مناسب وقت کی ان امید پہ وہ خود کو ضائع کر دیتے ہیں اور قبر کے بہت گہرے اندھیروں میں چلے جائیں گے. ایسے اندھیروں میں چلے جائیں گے کہ وہ برداشت ہی نہیں کر سکیں گے. آپ دیکھ نہیں سکتے, آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ کی ذات جب ہم سب کو ان چیزوں کو پڑھنے کا موقع دیتی ہے تو وہ ہمارے لیے کیوں نہیں یعنی فائدہ دیتا, کیونکہ ہم ان چیزوں سے فائدہ نہیں لیتے. علامہ اقبال کا ایک شعر سامنے آ گیا. آج کل کوئی ہے بڑا محسن ہے تو وہ کافی مجھے اشعار ایسے بھیجتے ہیں, تو میں جب پڑھتی ہوں تو ایک شعر پڑھ کے تو میں پھر بند کر دیتی ہوں میسج. پھر میں اس کو سوچتی ہوں کہ بات تو بڑی سچ ہے. یہ رباعی ہے, سنیے گا. محبت کا جنون باقی نہیں ہے. اب یہ کون سی محبت ہے؟ اللہ کی محبت ہے. والذین آمنوا اشدوا بالنا. محبت کا جنون باقی نہیں ہے, مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے. اور خون کون سا آپ خود سوچیں, کوئی بتائے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی. دوسرے پارے کے شروع میں نے ایک جملہ بولا تھا, اگر بول دوں تو شاید آپ پہنچ جائیں وہاں تک, کہ جسم میں جو دل کی حیثیت ہے نا, وہی امت مسلمہ کی اس کائنات میں حیثیت ہے. یہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. مسلمانوں میں تڑپ بھی کوئی نہیں کہ دوسرے بھی مسلمان ہو, خواہش ہی نہیں کہ دوسرے بھی سنیں, خواہش ہی نہیں کہ دوسرے بھی آئیں, اور خواہش ہی نہیں کہ دوسرے بھی جنت میں جائیں. کہتے ہیں مسلمانوں میں کوئی خون نہیں رہا, آج اندر تڑپ نہیں ہے. صفے کچھ ٹیڑھی صفے ہیں, دل پریشان, اپنے غم بڑے, روٹی بھی تو پکانی ہے جا کے, دل پریشان, اپنے غم بہت ہیں. اور سجدہ بے ذوق. نمازیں کون سی ہیں؟ ٹکری. وقت وقت طریق تو نہیں ہے کہ جذب اندروں باقی نہیں ہے. اندر جذب نہیں ہوتا. یہ قرآن ایاک نعبد و ایاک نستعین اندر نہیں جاتا, باہر نہیں آتا. اس لیے ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیسے اپنے آپ کو پریشان کریں. ایک اور شعر ہے, ڈھونڈتا پھرتا ہوں اقبال اپنے آپ کو, آپ ہی گویا مسافر آپ ہی منزل ہوں میں. لاسٹ مسلمان. تو بہرحال یہ تو پھر بتائیں بڑی لمبی ہو جائیں گی, لیکن یاد رکھیے کہ کچھ کر کے جائیں, کچھ کر کے جائیں. اگر نہ کیا تو پریشان ہوں گے. جی यकीन करें कि आज हमारे पास जो वक्त है ना, ये बहुत थोड़ा है। कुछ दिन के बाद हम इस जमीन के अंदर होंगे, कहीं अंधेरों में होंगे, तो फिर मैं ये वहां अंधेरे ही अंधेरे हैं। अगर आज दुनिया की कोई चीज आपको मुझे कारामत बनने से रोक रही है ना अभी तक, कुरान पढ़ के 18 पारे पढ़ के तो आग लग जाती है अंदर। ये कैसे हो सकता है कि इतनी आग हो रहा है ना, इल्म भी जा रहा है, पानी भी है, तेल भी है, अल्लाह नहीं मान भी जाता है, जिसको ईमान प्रूफ तो नहीं है, तो ऐसी जैकेट तो नहीं पहनी हुई जो वाटर प्रूफ है, ईमान जाता है, कुरान की आयतें पढ़ते हैं, और अल्लाह की तौफीक से आपको कोशिश यही की जाती है कि प्योर मैसेज मिले, तस्किया की भी कोशिश की जाती है, खुद से पूछें कि हर जगह तो छोड़े, किस जगह मेरे चमकने से अभी तक उजाला हुआ। और याद रखिए कि इसके लिए ठोकर खानी पड़ती है। अभी तक आप बहुत प्रोटेक्टेड है, मुझे डर लगता है आप लोगों से। अल्लाह इकबाल कहते थे ना कि खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इस तरह नहीं है। ठंडा मुसलमान कोई मुसलमान नहीं होता। ये कैसे हो सकता है कि आपके आंसुओं की गर्मी एक बंदे को न रुलाए, आपके पाओं की गर्मी किसी एक को ना दीन की तरफ लाए। मजबूरी, कोई काम लग जाए तो फिक्र लग जाए, कोई जिम्मेदारी पड़ जाए तो खौफ आ जाए, ये कैसे हो सकता है? 4 दिन आए तो 5वां दिन अजाब लग जाए आने को, एक काम करें तो दूसरा करना मुहाल लग जाए, ये नहीं होता। ये बहुत खतरनाक अलामत है। फिर ऐसे लोगों से अल्लाह ने फिर कोई काम लेना होता ना, फिर बहुत जबरदस्त चोट पड़ती है, अचानक वो अकेले रह जाते हैं तनहा। बचपन में माँ बाप मर जाते हैं, फिर वो बच्चे बड़े हो जाते हैं। जो प्रोटेक्टेड बच्चे होते हैं, सारी उम्र बच्चों की स्पून फीडिंग की होती है, आप देखें 18 साल के भी होके मामा मामा करके खाना मांग रहे होते हैं, ऐसे लोगों को फिर तूफानों से बात मिलती है, या फिर वो जाया हो जाते हैं। बस वो खुद ही डूब के पास सराग है जिंदगी। ये रास्ता आसान नहीं है, और ये भी एक बात याद रखिए। अब अगली बातें भी बताती हूँ, फिर आगे जाते हैं। अभी हम क्या पढ़ा है? अब आप इतनी लंबी बात से यकीन पे हुई तो कोई दौर किसके मरतबे पढ़े हैं? नूरे ईमान को जज करने वाले। हर उस्ताद की ख्वाहिश होती है कि सारे नूरे ईमानी में से सिद्दीक बन जाए, सारे नहीं बनते। जैसे माओ की दुआएं भी हर एक को नहीं लगती ना, इसी तरह एक दूसरा दर्जा लिखिए, सेकंड लेवल। इस नूर में से और इस हिदायत के अंदर से हिस्सा पाने वाला कौन सा होता है? जिनको महजूबीन कहते हैं, महजूब हिजाब से, पर्दों वाले। ये वो पर्दा नहीं है जो आप और मैं पर्दे के नाम पे पहनते हैं, वो नहीं, आड़ हिजाब। पहले कौन थे? सिद्दीकीन। दूसरे वो हैं जो महजूबीन, ये हैं दरमियाने दर्जे के लोग। अब खुद को ढूंढेंगे हम सब। मीम हा हा हदीस वाली हा, जीम वाव बा या नून, ये वो लोग हैं जिनके अंदर ईमान आता है लेकिन दिल पर हिजाब है। कुलूबुना गुल्फ वाले लोग, पर्दे हैं, या जंग लग जाता है, रस्टी हार्ट। आए मैं दिल पे गर्द पड़ गई। अब ये पर्दे भी 4 किस्म के आ गए थे। अल्लाह अकबर, इसी से तो हम अपने आप को परखेंगे कि मेरा क्या मसला है। जैसे डॉक्टर अंदर के टेस्ट करवाते हैं ना, ताकि पता चले बीमारी है तो सही लेकिन ये वजह क्या है। तो याद रखिए कि सिद्दीक बनने से रोकने वाली चीज क्या है? पर्दा, हिजाब। और हिजाब अमूमन 4 किस्म के। नंबर 1, अदम तौहीद, अल्लाह को नहीं पहचाने। वमा कदर अल्लाह हक्का कदरी, यानी अल्लाह की कदर नहीं, अल्लाह की शान, उसका मल हक जो है वो नहीं अदा कर पाते। ठीक है, अल्लाह को पाया ही नहीं अभी तक। सच्ची बात है, वो रब जो असल था उसको नहीं पाया, इसलिए जब उसको नहीं पाया तो उसकी जात और उसके दीन की भी कोई परवाह नहीं। दूसरी वजह होती है दुनियादारी में मशगूलियत, इनहिमाक फिद दुनिया। ये वो लोग हैं जो बाहर की दुनिया में बड़ी दिलचस्पी लेते हैं, इधर उधर जाने वाले, खेल कूद के रसिया, तमाशों में जिंदगी बसर करने वाले, और साथ आप कह सकते हैं कि फन के दिलदारा, गेट टुगेदर, सोशल। ऐसे लोगों के पास हकायक पर गौर करने का वक्त ही नहीं होता। इसीलिए आपको होता है कि जो अल्लाह वाले हैं वो कहते हैं कि अगर तुमने ईमान का सफर तय करना है ना, तो तुम्हें एक काम जरूर करना पड़ेगा, और वो क्या है? तकलील। किसमें तकलील कहते हैं? किल्लत, कम करो। किसको? इख्तलात माल अनाम, अलिफ से, अलिफ नून अलिफ मीम, अनाम। अनाम कहते हैं मखलूक को, اس کے مقابلے میں اللہ کی ذات ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کی معرفت کا راستہ تقلیل و اخلاط مال انام ہے, انسانوں سے ملنا جلنا کم کر دو, سوشلائز کم کرو. ہر وقت اس میں نہ رہو کہ آج میں ان کے گھر اور آج وہ میرے گھر, اور وہی بات پیپل پلیزر, محفلیں کم ہو جائیں گی, پیشادیوں میں نہیں بلائیں گے, آج مہندی تھی, آج اپٹن تھا, آج تیل تھا. آپ خود سوچیں کہ اگر آج آپ لیٹ آئیں تو کیوں لیٹ آئے, اگر آج آپ کی آنکھ نہیں کھلی تو ویکینڈ کہاں گزرا. عموماً جس ویکینڈ پہ ہم کسی فنکشن میں جاتے آتے ہیں یا کوئی آتا ہے, اس کے اگلے دن ہماری روٹین بدل جاتی ہے, کسی بھی رنگ میں بدلے, وجہ اچھی پڑھیں یا نہ پڑھیں, جو بھی کریں فرق پڑ جاتا ہے. بالکل یہ وجہ ہے بہت بڑی, اور بہت سارے لوگ آج ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جو آنا بھی چاہتے ہیں لیکن راستے میں پڑتا ہے. تیسرا پردہ اعمال بد کا زنگ ہے, زنگ لگ جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے. جیسے امام شافعی کے استاد وقی نے کہا تھا کہ علم نور, علم ایک روشنی ہے, اور اللہ تعالیٰ یہ روشنی قلب آسی کو نہیں دیتا. اور ایسی لوگوں کے لیے سورت متففین کے آیت 4 میں آتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, بلکہ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے. ایسے لوگ گناہ کرتے ہیں, یعنی محفلیں علم کی بھی ہیں اور گناہ کی بھی نہیں چھوٹتی, غلط چیزوں میں پڑ جاتے ہیں. ایسے لوگوں کو ایسی چیزوں کے اندر پڑنا مشکل نہیں لگتا. چوتھا پردہ سفلی خواہشات, خواہشات سفلیہ, جس میں پھر 4 چیزیں ہیں, حب دنیا, حب مال, حب شہرت اور حب جاہ. یعنی دنیا سے پیار, مال سے پیار, شہرت کے رسیا اور مرتبہ, کوئی آنر مل جائے, کوئی رینک مل جائے, یہ پردے بن جاتے ہیں. ایسے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ عقل کے اوپر پڑے ہوئے یہ پردے ہٹائیں. ایسے لوگوں کے لیے قرآن کا راستہ پتا کیا ہے؟ سورۃ آل عمران کا آخری رکو آیت 190, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. غور کرو, جاؤ گھومنے پھرنے, کائنات پہ بھی غور کرو, مخلوق میں کھو کے خالق کو نہ بھول جاؤ. ایسے لوگوں کے لیے سورہ زاریات آیت 21 میں آتا ہے وفی الارض آیات للموقنین, زمین میں یقین لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. وفی انفسکم, تمہاری تو اپنی ذات میں بہت نشانیاں ہیں, افلا تبصرون, کیا تم غور نہیں کرتے؟ تو ایسے لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ غور و فکر کریں, اس پہ تدبر کریں. اور دیکھیں جیسے زمین بہت بھی اچھی ہو نا, لیکن جب اس کے اندر سے جھاڑ جھنکار نہ اٹھائی جائے تو وہاں سبزہ نہیں اگتا. اسی طرح وہ لوگ جن کی زندگی میں یہ خواہشات ہیں نا سفلی, ان کا حال ایسی زمین کی طرح ہے کہ محنت بھی نہیں کر رہا ہے کسان, بیج بھی ڈالتا ہے, زمین کو گوٹتا بھی ہے, لیکن زندگی نہیں آتی. یہ ادھر ادھر کی چیزیں ان کے اس سارے پانی کو اور علم کو ضائع کر دیتی ہیں اور وہ ضائع ہو جاتے ہیں. سورۃ فصلت اور حامیم سجدہ میں آیت 53 میں آتا ہے سنریہم آیاتنا من فی الآفاق, سوری سنریہم آیاتنا فی الآفاق, ہم ان قریب ان کو اپنی نشانی آفاق میں دکھائیں گے, وفی انفسہم اور اپنی جانوں میں بھی ان کے, حتی یتبین لہم انہ الحق, یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ قرآن واقعی حق ہے. تو اگر یہ حجاب بہت گہرے نہ ہونا تو صرف اللہ تعالیٰ کی کائنات پہ غور و فکر سے یہ پردے دور ہو جاتے ہیں اللہ کی توفیق سے, اور اگر یہ نہ بھی دور ہونا تو اللہ مشکل میں ڈال دیتا ہے. سیدھا سا اصول ہے, بڑی خیر ہوتی ہے مشکلوں میں. جب آپ زمین و آسمان کی نشانیاں نہیں دیکھ کے اللہ کی طرف آئے تو اللہ آپ کے انفس میں نشانی ڈال دے گا, بستر پہ ڈال دے گا آپ کو, پھر آپ کی آنکھوں سے آنسو بہیں گے, پھر آپ کہیں گے ہائے اٹھ بھی نہیں سکتی, مڑ بھی نہیں سکتی, آپ تو کروٹ بھی نہیں بدل سکتی, پھر آپ روتے ہیں. وہ اصل میں اللہ کو کہتا ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, غور کر کہ صحت مند جسم تھا تو کیا کرنا تھا, جو نہیں کیا تو آج اللہ نے تجھے اس مشکل میں ڈال دیا. اور اس طرح پھر انسان کائنات کے ساتھ اپنی ذاتی زندگی میں اللہ کو پا جاتا ہے. اچھا, اس میں صرف دکھ نہیں آتے, کبھی بہت بڑی نعمت اللہ دے دیتا ہے آپ کو, کبھی بہت بڑی نعمت مت ملے نا, خوشی, خوشی جس کو کہتے ہیں, بڑی خوشی ملی اور رات بھر آئی, سر سجدے سے نہ اٹھے, ایسے لگے کہ میں ایسے فیل کرتی ہوں کوئی مجھے خوشی ملتی ہے نا تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں سجدے میں گئی ہوئی اور میری بیک کے اوپر کسی نے کوئی پلیٹ رکھ دی ہے, تو سر اٹھاؤں گی نا تو پلیٹ گر جائے گی. اپنی ہر نعمت خوشی کو سجدے سے ریلیٹ کر لیں, अकड़ूंगी, सीधी होंगी, सीधा खुशी पटक से पीछे जाएगी, और फिर वह उलट के पड़ती है, फिर सीधी नहीं गिरती, वो पलट जाएगी जो उसमें गिरा। नेमते देने वाला आपको अपने करीब करना चाहता है, लेकिन जब उन नेमतों की वजह से उससे और दूर हो जाए तो दिल पर पर्दे आ जाते हैं। पर पर्दा एकदम भी नहीं आता, पहले थिन आता है, जरूरत कम लगती है, एहसास कम होता है, और एक वक्त आता है कहते बहुत ही ज्यादा आगे चली गई थी मैं तो, सारी छूट गए थे, सारी दोस्तों ने मेरे से मुंह फेर लिया था। तो फिर फस कुरून या अस्कुर को वश कुरू ली वला तक फुरोन, मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा, मेरा शुक्र करो, ना शुक्री ना करो, फिर अल्लाह के हुक्म से वो सारी चीजें ठीक होने लगती हैं। गौर फिक्र तदब्बुर, तो फिर गोया कि आप कह सकते हैं कि ये पर्दे हटने लगते हैं। पूरा सूरत आल इमरान का आखिरी रुकू ज़हन में रख लें, रब्बना इन्ना समेना मुनादिय युनादि लिल ईमानिय नामिनु बिरब्बिकुम फामन्ना, ये चाहिए अल्लाह को। पुकारने वाले की पुकार पे बस एक लफ्ज बोल दें, रब आमन्ना, बस ईमान ले आए, तो अल्लाह के हुक्म से ये पर्दे फिर हटने लगते हैं। एक तीसरा और आखिरी गिरोह बदबख्तों का गिरोह है, इसका नाम लिख लीजिए मख्तूमीन, खत्मा से, खत्म कहते हैं मुहर लगने को, सील्ड, यानी जिनके दिलों पे सील लग चुकी है। तीसरा और आखिरी दर्जा उन लोगों का, टेढ़े हिजाब इतने गहरे और थिक के दिल ही स्याह हो गया, कल्ला बलरान वाली कैफियत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा एक गुनाह करता है तो इसके दिल पर एक स्याह नुक्ता लग जाता है, फिर जब वो गुनाह से बाज आ जाता है, तौबा इस्तगफार करता है तो दिल साफ हो जाता है, अगर तौबा के बगैर दोबारा गुनाह करे तो इस स्याही में फिर इजाफा हो जाता है, बिल आखिर सारा दिल काला हो जाता है, और इसी का नाम रान यानी जंग है, जिसका अल्लाह ने जिक्र किया कि कल्ला बलरान अला कुलूबिहिम। और सूरह बकरा 7 में क्या पढ़ा था, सबको होगी याद, खत्म अल्लाह अला कुलूबिहिम वाला समय, अल्लाह ने इनके दिलों पर मोहर लगा दी, तो ये मख्तूमीन है, ये नहीं आते, ये नहीं पलटेंगे, ये कुफर पे मर जाएंगे, इस्लाम इनको नहीं मिलेगा, जैसे बड़े बड़े नाम इसमें मौजूद हैं। अल्लाह बचाए, इनको कुरान समझ ही नहीं आता, दिल पे असर ही नहीं आता, वैक्स लग गई दिल पर। तभी तो अल्लाह कहते हैं अल्लज़ीना कफरु सवाउन अलैहिम अनज़रतुहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, ये नहीं मानेंगे। सूरह यासीन आयत 10 में आप पढ़ेंगे, लियुनज़िरा मन काना हय्यन, हय्यन सॉरी, आयत 10 में हमने पढ़ा ना कि ये जिंदा है लेकिन इनके दिल मुर्दा हो चुके हैं, रूहें दफन हो चुकी हैं, चलते फिरते मकबरे हैं। ये काफिर जो है ना, ये असल में इंसान नहीं है, ये मकबरे हैं, लाशें हैं, क्योंकि इनको अल्लाह की समझ ही नहीं आती। और सूरह यासीन आयत 17 में तली युनज़िरा मन काना हय्यन व यहक्कल कौलु अलल काफिरीन, ताकि वो हमारा नबी से खबरदार करे जो जिंदा हो, अलबत्ता काफिरों पर तो हक का कौल या हुज्जत तमाम होगी। जिंदा कोई फायदा होता है ना, कभी मुर्दों का ऑपरेशन कराया आपने, जिंदा का कराते हैं ना, तो कुरान का इल्म जिंदा लोगों का इलाज करता है, अगर दिल मुर्दा है वो आएंगे नहीं, वो कहेंगे हमें इसकी जरूरत नहीं। सूरत नमल आयत 80 से 81 और सूरत रूम आयत 52 से 53 में अल्लाह ताला कहते हैं इन्नक ला तुस्मिउल मौता, ए नबी आप यकीनन मुर्दों को नहीं सुना सकते और ना बहरों को, जबकि वो खुद ही मुंह फेर कर चल दिए, और ना आप अंधों को इनकी गुमराही में हिदायत दे सकते हैं, आप सिर्फ इन लोगों को सुना सकते हैं। कौन? मैं यूमिनु बिआयातिना फहुम मुस्लिमून, जो ईमान लाते हैं और हमारी आयतों पर अमल करते हैं। तो खुलासा क्या है कि अल्लाह का नूर फैला हुआ है, हर बंदा अपने हिसाब से हिस्सा लेता है। अल्लाह ताला एक बात को बार बार पेश करते हैं कि शौरी मुसलमान बनो, छोड़ो नहीं इस दीन को। तो अब हम अपने ऊपर से खुद पर्दे हटा के देख सकते हैं कि हम इन तीन में से किन गिरोहों में, आयत तो अल्लाह ने हमें पढ़वा दी, अब इसके ऊपर अपनी कैफियत हम खुद देखेंगे, और यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा का अमल किस पे फिट होता है। एक दफा सिर्फ आयत 35 की तिलावत सुने, सुनते हैं हम सब, और फिर अपना मुहासबा, अब इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मुहासबा होगा।
يكاد زيتها
आप क्या शेयर करेंगे, क्या इनपुट है आपका? ऐसा करते हैं कि आज मेरा हाल 10 मुहर्रम है, तो सबका ही रोजा होगा इल्ला ये कि चंद लोगों का, तो एक वक्त में दोनों काम हो जाएंगे, ठीक है? बाकी कुछ लोग नमाज पढ़ेंगे, बाकी लोग जिनका अगर किसी मजबूरी से रोजा नहीं तो वो खा पी ले, तो हम 10 मिनट काफी, 10 मिनट में वापस आते हैं, और कोशिश करें इस पूरे वक्त में बात ना करें किसी से, ठीक है? तो नमाज के बाद इंशाल्लाह फिर आप लोग शेयर करेंगे, इसी तरह ऑनलाइन वाले भी करें, आप सब ऑनलाइन वाले भी बगैर जरूरत के बोले नहीं।